ओम शांति। आप सब में से किसी ने उड़न तस्तरी को देखा है? किस किसने देखा, हाथ उठाइए। उड़न तस्तरी को देखा है? नहीं देखा? आज हम आपको दिखाएंगे। देखा है? सामने बैठी है। उड़न तस्तरी क्या करते हैं? उड़ते हैं और उड़ाते हैं। वो दूर दूर दिखाई देते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हमारी प्यारे बाबा के हर गोपी संग लगता श्याम प्यारा गीत सुना ना, इन्हीं के ऊपर है। इनको देख करके कौन याद आता है? वो श्याम प्यारा दिखाई देता है। तो ऐसे वो श्याम प्यारे के दिल में समाई हुई प्यारे बाबा की गोपी बहन, जन्म स्थान विदेश की धरनी और कर्म स्थान भारत, लंदन में आपकी विशेष सेवाओं का स्थान रहा। लेकिन ये हीरा इतना पसंद आया बाबा को, वहां के म्यूजियम में से निकाल करके कहाँ रखा? माउंट आबू में। माउंट आबू हमारा हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस में स्पेशल बाबा का ये शोकेस है। इस शोकेस में कैसे हीरों को रखा जाता है? स्पेशल होते हैं ना, विशेष होते। ऐसे लंदन से निकाल करके, लंदन में भी अपनी सेवाएं देते, उड़न तस्तरी बन करके मैंने देखा भी। कल या परसों ही जाने वाली स्वीडन, जा चार पांच देश आएगी, फिर आएगी, फिर चार पांच देश आएगी, फिर आएगी। ऐसे विश्व भर के अंदर बाबा का संदेश देने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया। तो कुछ एक आत्माओं को ऐसा सौभाग्य मिला हुआ है, एक है सुनाते सब लोग है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टता, हर आत्मा को संतुष्ट करने की कला मैंने गोपी बहन में देखा। तो ऐसे लगता है जैसे बचपन, कई बार इनके संपर्क में आने से मुझे लगता है इस जन्म की आत्मा नहीं है, पिछले जन्म की ही आत्मा है, जो बाबा के यज्ञ में दोबारा आकर के बाबा के इस बेहद के कार्य को, यज्ञ में विशेष जिम्मेवारी को निभा करके अभी किचन बनाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दीदी ने उठाया हुआ है और उसी में सवेरे से रात तक लगी रहती है। तो ऐसे बेहद की सेवाएं, सेवाओं में भी न जाने कितने मिसाल इन्होंने स्थापित किया, नई नई युवाओं की सेवाओं को लेकर के विश्व भर के लिए इकट्ठा करना, उनको मैनेज करना। अभी 21 जून के कारण आज खास अंतर्राष्ट्रीय इसमें जा रही, यूएनओ के ऑफिस में जा रहे हैं गोपी में जा करके, अंदर का लक्ष्य एक ही कि बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो ऐसे महान विभूति आज हमारे बीच में है, आप इनको सुनेंगे ऐसे लगेगा दादी जानकी जी का रूप निकल करके आ गया। बहुत से ऐसे लोग जो मिस करते हैं ना दादी जानकी जी को, ज्ञान की गहराई, गुह्यता, महीनता को, बिल्कुल दीदी ने ऐसे अपने जीवन के अंदर ज्ञान को गहराई से पी लिया। कहा जाता है ना पानी से पतला ज्ञान है, तो पानी से भी पतला 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 बना करके इन्होंने पिया भी है और देने की कला, ऐसी विशेष कला आपके अंदर है। और विदेश की संस्कृति में रहते हुए आपको लगता है फॉरेन कल्चर वाले लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट क्या कहता है, त्याग, तपस्या और सेवा, कहीं मैच नहीं करता। लेकिन इनके जीवन से, इनके व्यवहार से, इन्होंने वास्तविकता से ऐसे त्याग तपस्या का जीवन जिया है, तो वो अनुभव हमारे बीच में रखेंगे। दादी जानकी जी के अंग संग के भी अनुभव हमारे साथ में रखेंगे। आदरणीय प्यारी हमारी मीठी गोपी बहन जी,
ओम शांति, सभी को ओम शांति। दीदी आपको भी खास ओम शांति। आप मेन टीचर तो आप हो, लेकिन फर्स्ट स्टूडेंट भी आप हो, नहीं? देखो कभी कभी जैसे परिचय सुनाते हैं ना ऐसे, तो हमको अंदर से लगता है किसका परिचय दे रहे हैं। माना कभी कभी आश्चर्य लगता है कि बाबा ने क्या कराया है, क्या किया है, हमारी बल कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन हम हाजुरी भरते हैं। जैसे कोई वफादार कंपेनियन होता है ना कि हाँ ठीक है, हम हैं साथ में, आपको जो करवाना है करवाओ। तो मेरे अंदर बहुत समय से ये भावना रही है कि बाबा स्वयं आया है हमारे सर्वेंट बनने के लिए, गॉडलीस सर्वेंट। वो सर्वेंट के बच्चे, हम आपके सर्वेंट है, तो हम कैसे सेवाधारी अपने आप को कहला सकेंगे? कराने वाला तो वो है ना, एक एक आश पूरी करने वाला, बच्चों का बाप है, ईश्वर है। तो हम तो कहेंगे हमारा बीच में पूर्व जन्मों का पाप मिट रहा है और हमारा सेवा में जो हम अंगुली डालते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है। तो अंदर से थैंक्स बहुत निकलता है बाबा के लिए। इसलिए कितना भी कुछ हो जाए, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हाँ, तो इसमें यही भावना रखेंगे ना तो कभी भी आपकी एनर्जी कम नहीं होगी। मुझे याद है शुरू शुरू में ये जो त्याग की बात आती है ना, तो एक बारी हम दादी का ट्रांसलेशन करते थे कई बहने, तो कई बारी हमारा टर्न होता था, तो दादी जी जब बोलते थे तो काफी स्पीड से बोलते थे और वो भी आधा सेंटेंस कभी कभी होता था उनका, और हिंदी में 3 शब्द और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन 6-7 शब्द होता है, तो हमको बड़े स्पीड से ट्रांसलेशन करना पड़ता था। तो एक बारी दादी ने 2 घंटे तक क्लास चलाई और इस 2 घंटे में हमको 4 घंटा बराबर स्पीड से ट्रांसलेशन करना पड़ा। उसके बाद जब हम कमरे में आए तो दादी जी बैठे थे, कुछ ज्ञान अमृत पढ़ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो हम बाजू में आकर के बैठे ऐसे धक करके। अच्छा आई हो तुम? हाँ दादी। दादी मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब क्लास में बैठो ना और ना थोड़ा स्लो डाउन कीजिए, हमारा ख्याल तो रखो, थोड़ा फास्ट स्पीड हुआ है, ऐसे ऐसे जैसे कोई क्या है सागर में तैरते हैं ना, तो इतनी सारी लहरें लहरें आ रही है, उसके बीच में तैरना थोड़ा मुश्किल लगता है हमको। दादी ने ऐसे किया, साइलेंस में बैठी, फिर बताया, अच्छा आप लोग क्या थक गई हो तुम? मैंने बोला थोड़ा सा तो थक गई हूं। कहते क्यों? मैंने बोला आप बताओ ना मैं क्यों थकी हूं। कहते क्योंकि आप लोग अपनी एनर्जी यूज करते हो, दादी बाबा की एनर्जी यूज करती है। क्या अभी दादी थकी नहीं है? दो घंटे तक बोलिए, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तुमको क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? तब से लेकर के मुझे ये बात बहुत जची, क्योंकि दादी फिर हर बात, फिर मैंने दादी के साथ चिटचैट शुरू किया। मैंने बोला दादी आप लोग सदा बोलते हैं बाबा करा रहा है, बाबा सब कुछ कर रहा है, आपको दिखाई नहीं देता है। तो हमने फिर जवाब दिया, छोटे थे उस समय, नहीं दादी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, हम जो कर रहे वो दिखाई दे रहा है। तब से लेकर के, उस वार्तालाप से लेकर के मेरे अंदर एक बहुत एक रुचि पैदा हुई कि मुझे आखिर मेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। रियलिटी जो दादी कह रही है कि इतनी उम्र में बाबा इनको चला रहा है, इतने घंटों तक बैठना, क्लास कराना, और फिर भी जब कमरे में आकर के बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये क्या है सीक्रेट इसके पीछे? तो उस दिन से आज दिन तक हम कहेंगे उस सीक्रेट की जानकारी है हमारे पास। रियलिटी ये है, आप जहां बैठते हो, ठीक है, आपको लगता है मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरी लाइफ है, मेरा घर है, मेरा ये है वह है, मैं कर रहा हूं, लेकिन क्रिएट किसने किया आपको? आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं जिनके गुड विशेस, जिनके प्यार के आधार से आप यहां तक पहुंचे हैं? तो आप कैसे कह सकते मैं सब कुछ करती हूं, करता हूं, बस मैं हर कर्म का सक्सेस लेना चाहती हूं? रियलिटी क्या है? तो रियलिटी के डेप्थ में जाओ। त्याग माना एक रूप से कहा जाता है शरीर का भान को त्याग करो, शरीर के देह के संबंध पदार्थ को त्याग करो, लेकिन रियलिटी में जाना है। त्याग एक छोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है, रियलिटी को के साथ जोड़ने की बात है कि रियल में जो मेरे अंदर जो अभी भावनाएं हैं, चलो हम कहेंगे जब दादी जानकी ने शरीर छोड़ा, सच में मैं आपको बताऊं दादी की करण करावन हार ने दादी जी को किस तरीके से मैजिक से यूज किया, और वो भावनाएं हमको जैसे एक पावर बैंक से चलाया, इतनी सेवाएं कराई, वो जब दादी ने शरीर छोड़ा तब मुझे महसूस हुआ कि जो मैं समझ रही थी कि मैं सेवा के फील्ड पे ये कर रही, ये तो गलत था, ये तो इसकी शुभ भावना थी, करण करावन हार बाबा का काम था। तो आखिर गोपी तुमने किया क्या है? तेरी भावना शुद्ध है? इतनी अवेयरनेस है करण करावन हार करा रहा है? दादी ने तो अपना पद ले लिया, कर्मातीत अवस्था बना, कितनी लाखों करोड़ों आत्माओं का भाग्य खुलवाया है दादी ने, मैंने क्या किया है? मैंने बस पाई पैसे का जो उन्होंने भाग्य खुलवा करके वो मैं मेरा करके बैठी हूं क्या? तो एक प्रकार की ह्यूमिलिटी चाहिए, रियलिटी में रहने के लिए एक ह्यूमिलिटी चाहिए। और सच में जब ह्यूमिलिटी पैदा होती है ना अंदर से, तो एक बहुत दिल से थैंक्स निकलता है बाबा के प्रति, बड़ों के प्रति। अभी चल हमारे बड़े शांत बैठे हैं, कोई बुद्धिमान आता है, दिमाग चलाने वाला आता है, कहते नहीं नहीं हम चलाएंगे ना, लेकिन वो नहीं देखता है कि इसकी बुद्धि क्यों चलेंगी, क्योंकि ये शांति की शक्ति का दान दे रही है। समझ में आई बात? अभिमान का धोखा बहुत खाया है, इसके वजह से थकान होती है। तो कहने का भाव है थोड़ा रियलिटी में जाओ, अपनी भावनाओं में एक शुद्धता लाओ, आप साक्षी होकर के खुद को देखो, प्रेरणा कहां से आ रही है। मेरी भावनाएं जब मैं बाबा के सामने बैठी हूं तो कौन सी भावनाएं प्रकट हो रही है। ये आपका अविनाशी अनादि पाठ का निशानी है, क्योंकि बाबा आपका एक श्रेष्ठ पाठ खोलने वाला है ना। उसके पहले तो आप सब साधारण थे, ये जो शरीर था पुराना, जो 83वें जन्म का शरीर था, 84 जन्म एक स्पिरिचुअल जन्म है ना, रियलाइजेशन का जन्म है, एक सूक्ष्म जन्म है, जिसमें आत्मा को पता है कि ये मिट्टी है, पुराने संस्कार देह का मिट्टी है, उसमें से मुझे कमल फूल समान बनना है, एक दूसरे कल्चर में, स्मृति में, यादाश्त में मुझे रहना है। तो त्याग माना क्या, मुझे मिट्टी में रहना है, मिट्टी के साथ अटैचमेंट है, या मुझे कमल फूल समान बनना है। तो त्याग त्याग महसूस नहीं होता है, ब्यूटी महसूस होती है, रियलिटी, ब्यूटी, ब्यूटी की रियलिटी में जाकर के एक नई छवि आपके सामने प्रत्यक्ष होती है। समझ में आई बात? जब वो चीज खुलती है दिल दिमाग में, वो भावनाएं प्रकट होती है ना, छोटी मोटी बातों में क्या क्या बात है। अभी बात तो है ये, हमने तन मन धन से पाप तो किया है कितने जन्मों तक, ठीक है, उसका अकाउंट तो है हमारे संस्कार में, स्वभाव में, वो खींचेगा हमको, शरीर के द्वारा खींचेगा, फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगी, डर आएगा, बहुत कुछ आएगा, खास करके पैसों का डर। हाय, क्यों पैसों का डर क्यों आता है? क्योंकि पैसों का व्यर्थ गवाया है तब तो डर आता है ना। जिन्होंने ईमानदारी से धन को यूज किया है उसको कभी डर नहीं होगा, क्योंकि उसको धन से कोई मतलब ही नहीं है, ईमानदारी से मतलब है। जिसने ईमानदारी से नहीं चलाए वो ऑलवेज डर में रहेगा, दबाव में रहेगा, झुकाव में रहेगा। मनी इज लो लेवल एनर्जी, इसके पीछे भाग रहे हो क्या? और मनी को त्याग करने के लिए इतना सोच रहे हैं क्या? अपनी ईमानदारी, अपनी खूबियां, वो कहां गए? तो बात क्या है, पहले अंदर जाकर के बाबा मुझे क्या बना रहा है, पहले उसको झांको। अब भट्टी में आए हो ना, मैं आज ही बता रही थी कि दादी जानकी जी 2020 मार्च 2020 में शरीर देह त्याग किया, ठीक है, दिसंबर 2019 में हम उनके कमरे में, बेडरूम में बैठे थे। मैंने दादी को पूछा, दादी वर्तमान समय में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो दादी थोड़ा शांत होकर के फिर बताया कि देखो, हमारे दिन में हमको लग रहा था कि, और हमको ये महसूस भी हो रहा था कि हम कुछ खास है। बाबा भी उस दृष्टि से देख रहे थे, हमारी भी स्मृति रहती थी, हम एक ऊंचे कुल के हैं, कितनी श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं। अभी वो फीलिंग रही नहीं है। दादी क्या देख रही है, विस्तार में बहुत साधारणता हो गया है, बस साधारण माफिक चल रहे हैं, मोबाइल हाथ में ऐसे वैसे, जैसे दुनिया चलती है ऐसे चल रहे हैं, और उस साधारणता में व्यर्थ बढ़ा है। और जब व्यर्थ बढ़ता है तब प्यार की कमी, ईश्वर से प्यार नहीं खींच सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण तो नाम से बुला रहे हैं हम, लेकिन प्यार की झलक, क्योंकि रूट क्या है, अपनी छवि नहीं बनाई है, ईश्वर मुझे किस दृष्टि से देखता है। मैं जो खुद की दृष्टि खुद के लिए देख रही हूं और बाबा मुझे जिस दृष्टि से देख रहा है, मैंने अभी तक उसको झांका नहीं है। पहले यहां शुरू करो आप, तब और बातों से सब रस उठ जाएगा, आप क्या बन रहे हैं, ईश्वर क्या आपको बना रहा है, वो जब उसका नशा पैदा होता है ना, तब बुद्धि निशाने पर आ जाती है, तब आपकी लाइफ फोकस रीति से चल सकती है आगे। अदरवाइज भटकेंगे, नशा नहीं है क्या करे बहन जी, योग नहीं लगता है क्या करे बहन जी, कैसे जीवन में जिए, लौकिक के साथ कैसे रहे, ये सारे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? उठते हैं क्योंकि आत्मविश्वास नहीं बैठा है, बीज ये है, हम इतना कन्विंस्ड नहीं हुए हैं कि बाबा की दृष्टि मेरे प्रति इतनी श्रेष्ठ है, और हमने उसको स्वीकार भी नहीं किया है। रूट ये है, और इसको एकांत में बैठ करके आपको खुद को टाइम देने का अभी आपको मौका है, यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करो, पूरी जिंदगी वेस्ट की है, और ईश्वर के घर पे आकर के और ही वही चाला चाल, वही चलन, वही गपशप। दादी कर्मातीत अवस्था बनी है, ऐसे एकांत में बैठ करके 8 घंटे के योग के नहीं बनी है, कर्मयोगी फरिश्ता होकर के जीरो वेस्ट की पॉलिसी थी दादी की, जीरो वेस्ट, इसीलिए तो फुल पावर मिलता था भगवान से। तो फर्स्ट लेवल ये है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं त्याग के विषय पे। हम बचपन से मधुबन में आते हैं, ठीक है, 70 से लेकर के 77 में पूरा परिवार को ज्ञान मिला, और हम परिवार सहित आते थे मधुबन में। एक दिन जब ऐसा हुआ, मुझे अंदर से लगा कि मुझे इनफ, तब तक तो मैं टीनेजर बन गई थी, मुझे अभी इनके साथ नहीं जाना है, मुझे अकेला जाना है। लेकिन अकेले जाने के लिए तो पैसे चाहिए, टिकट चाहिए, और मेरे अंदर से उस समय क्या संकल्प आया कि देखो, मैं जब तक एक भी पैसा लूंगी मां बाप से, तो डिसीजन मेकर वो ही रहेंगे मेरे लिए, वो जो बोलेंगे मुझे उस हिसाब से चलना पड़ेगा, तो मुझे अपनी इंडिपेंडेंस लेनी है अभी, मुझे अपने पैर पे खड़ा होकर के बाबा के सामने जाना है, किसी का सहारा लेकर के नहीं जाना है। तो मैंने सोचा, तब मेरी उम्र थी 14 साल की, अभी लॉ के हिसाब से तो कहते हैं 18 साल में फिर आप इंडिपेंडेंट, मैंने बोला अरे लॉ किसने बनाया, ह्यूमन लोगों ने बनाया, मैं तो अपनी गॉडली श्रीमत अपने गॉडली लॉ से चलूंगी, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के साथ मैंने क्या किया, एक जॉब ले लिया, पार्ट टाइम जॉब लिया मैंने, मैंने बताया नहीं माँ बाप को, और मैंने बहुत सोच समझ के पार्ट टाइम जॉब लिया। मैंने सोचा ठीक है, पैसे कमाया है तो मैं अपने मेहनत से पैसे कमा करके टिकट लूंगी। अभी जॉब की बात आती है, कौन सी जॉब लूंगी, तो मैं बैठी बाबा के पास, मैंने बोला बाबा मुझे विश्व में एक बेहद की सेवाधारी बनना है, तो मुझे अभिमान तोड़ना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, मेरा लाइफ लॉन्ग मिशन है देही अभिमानी बनना, देह का अहंकार को तोड़ना है। तो मैंने सोचा कौन सा जॉब लू जिसमें मेरा अभिमान टूट सकता है, अहंकार टूट सकता है। तो मेरे मन में आया क्लीनिंग जॉब लेना है, सफाई का जॉब लेना है, ठीक है। अभी मैं सफाई का जॉब कहां से ढूंढू, मैं माँ बाप को तो बोला हमारा खानदान तो बहुत ऊंचा है, उनको बोलूंगी तो मुझे सीधा मना करेंगे। फिर मेरी एक फ्रेंड थी, और उस फ्रेंड के माँ बाप एक, वो कहते हैं ना विदेश में बूढ़ा घर, वो केयर होम होता है ना, सीनियर सिटीजन होम होता है, तो उनके पास ऐसे 2-3 सीनियर सिटीजन होम थे। तो मैंने फ्रेंड के साथ बात किया, मैंने बोला आप मुझे क्लीनिंग जॉब कई जगह पे दिलवा सकते हैं, तो वो तो शौक हो गए, तुमको क्यों क्लीनिंग जॉब, मैंने बोला तुम वो चिंता नहीं करो, मुझे बस जॉब दिला दो 6 मास के लिए, ठीक है। ऐसे करके गुप्त रख करके जॉब दिलवाया, धीरे 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 पैसा इकट्ठा हुआ, और मुझे अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, क्योंकि देहभान को तो छोड़ना पड़ता है, हम कितने ऊंचे खानदान वाले हैं, कितने मेरे वो माँ बाप है, वो लोग क्या बोलेंगे, लोक लाज को तोड़ना पड़े, बहुत कुछ, प्रोसेस में बहुत कुछ लेट गो करना पड़ा। फिर जब इनफ पैसा आया हाथ में, मैंने सबसे चीपेस्ट से चीप टिकट खरीद लिया, वो है ना कजाकिस्तान एयरलाइंस, वो है ना जो बिल्कुल किसी ने सुना भी नहीं एयरलाइंस का ऐसा। और मैंने वहां पे सेंटर पे कोई एक स्टूडेंट थी, उसको भी मधु बनाना था, मैंने इसका साथ पकड़ा, मैंने बोला चलो हम इस एयरलाइंस पे जाते हैं, बहुत चीप टिकट है, लेकिन लंदन से उड़ती है, कजाकिस्तान में रुकती है, फिर वहां से दिल्ली आती है, फिर दिल्ली से हम बाई ट्रेन आबू आ जाते हैं, ठीक है। उस दिनों में तो बाई ट्रेन ही आते थे, तो बड़ी खुशी से मैंने अपनी टिकट बनवाई। फिर मैंने एक वीक जाने से पहले मैंने अपने माँ बाप को बोल दिया कि मैं मधुबन जा रही हूँ, तो थोड़े हंसने लगे, पैसे कहाँ से, मैंने बोला मैंने सब प्रबंध कर लिया है, मेरे हाथ में टिकट भी है। अच्छा, शॉर्ट में मैंने बता दिया। और फिर मैंने इधर दादी को भी मैसेज भेजा था मैं आ रही हूँ, लेकिन माँ बाप के सहित नहीं आ रही हूँ। तो फिर हम पहुंचे एयरपोर्ट पे, जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे ना, तो वहां पे जो चेक इन डेस्क होता है, तो उसके पीछे पूरी कैमरा क्रू लगी थी। हमको तो पता नहीं है कि कैमरा क्यों क्यों लगी है। तो हम चेक इन के लिए गए, बोर्डिंग पास मिला हाथ में, हम प्लेन पे चढ़े, और साथ साथ में हमको पता नहीं था लेकिन कैमरा क्रू भी चढ़ा, और वो बीबीसी का कैमरा क्रू था, बाद में पता चला हमको। फिर जब हम कजाकिस्तान पहुंचे तो वहां पे 2 घंटे का स्टॉप ओवर था, उस 2 घंटे 8 घंटे हो गए थे, 7 या 8 घंटे हो गए थे। तो हम तो अपना खाना लेके आए थे, हम दोनों तो शांति से कोने पे बैठ गए, और कोई हमको ना बतावे कि इतना घंटा 2 से 3 घंटा हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति ना आवे, तो 4 घंटे तक बहुत लोग परेशान हो गए थे। फिर ये कैमरा क्रू बाहर आया और सभी का वो फोटो निकाल रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, और हम तो शांति से बैठे थे, अपना भोजन ब्रह्मा भोजन खा रहे थे। तो हमारे पास जब कैमरा क्रू आया तो पूछा कि अरे इतना डिले हो रहा है, कोई नहीं बोला, और इतने लोग हंगामा कर रहे, आप लोग शांति से इधर क्यों बैठे हो, इतना शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं आपसे, आप कैसे शांत होकर के बैठे। तो हमने बड़े उमंग से बता, हम तो मेडिटेशन सीखते हैं, हम मेडिटेटर्स हैं, हम हमारे आश्रम पे जा रहे हैं। तो एक को बड़ा इंटरेस्ट लगा, पूछा अच्छा कौन सा मेडिटेशन, बोला राजयोग का मेडिटेशन। तो उसके ऊपर 2-3 मिनट का क्लिप हमारे से लिया, अच्छा मेडिटेशन अच्छा मेडिटेशन से हम ये घटना फेस कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं। तो वो फिर चैप्टर पूरा हो गया, फिर प्लेन पे चढ़े और फिर दिल्ली पहुंचे और मधुबन पहुंचे। तो उन दिनों में ये मोबाइल नहीं था, हमको ये टेलीग्राम आते थे या फैक्स शुरू हुआ था उस समय। तो क्या हुआ, 1 वीक के बाद हमारे फादर ने हमको मैसेज भेजा, और उसमें मैसेज में लिखा था कि 2 रात पहले आप बीबीसी के ऊपर आपका फीचर आया था, उसमें आप 1-1.5 मिनट तक आपने मेडिटेशन का परिचय कराया था, लेकिन पूरा जो बीबीसी का ऑनलाइन आता था ना उस समय पे, और जो इवनिंग स्लॉट आता है, उसमें आपका सारा वीडियो क्लिप आया था। अभी हमारा क्या लेना देना है इससे, ठीक है उन्होंने तो वीडियो क्लिप पर सेवा हुई ना, लेकिन हमारे प्लान के आधार से सेवा नहीं हुई। बीज कहां से शुरू हुआ, जब ही वो संकल्प क्रिएट किया था कि मुझे सहारा को त्याग करना है, हमारे परिवार देह के संबंध का जो कंफर्ट है उसको त्याग करके मुझे अपने शक्ति के आधार से, अपने इंडिपेंडेंस, अपने व्यक्तित्व शक्ति से मुझे खड़ा होना है, वो त्याग किया ना, उसके बाद फिर मेहनत किया ना, ऐसे थोड़ी त्याग करके फिर हवा में आएंगी बातें, मेहनत करके करके अपनी हिम्मत से फिर हम गए। और क्या सेवा होने वाली है, वो तो ऑटोमेटिकली हुई, मैंने ना सेवा का प्लान बनाया ना मैंने सोचा। तो आपको एक मोबाइल सर्विस स्टेशन बनना है तो त्याग की वृत्ति और तपस्या का प्यार चाहिए, तभी आप देखेंगे आपके पीछे पीछे सेवा छिम छिम करके आएंगी। अभी तो क्या है, हम सेवा के आगे गुलाम हैं। अरे बहन जी, हमको मुझे मैं तो क्लास देने से भागती हूं, ये मेरे पीछे करते हैं, आप प्लीज क्लास, मुझे शौक नहीं है क्लास कराने का, मैं रियलिटी आपको बताती हूं। और आजकल नहीं, मुझे पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, ये चांस चाहिए, अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, गुलामी है। मुझे याद है एक बहन आई थी, वो चाइना की बहन थी, शुरू में 25-30 साल हो गए शायद, तो उसको चांस मिला था मधुबन आने का, वहां उसको कई देश में, पता नहीं कहां, अमेरिका में उसको ज्ञान मिला था, तो वापस चाइना गई थी। बड़ी उमंग से उसको था कि मुझे यहाँ सेंटर खोलना है, लेकिन वहां के कायदे बहुत, कानून बहुत कट्टर है, तो उसको बहुत डिफिकल्टी हुई। पुलिस आकर के उसका पूरा चेकिंग किया, उसके घर के दरवाजे के बाहर पुलिस रखा, नीचे सड़क पे स्ट्रीट पे एक पुलिस कार रहती थी, तो इसको बहुत बंधन लगता था कि मैं सेवा नहीं कर पा रही हूं। तो आई अभी मधुबन में दादी को मिलने के लिए, ठीक है, तो दादी के पास जब बैठी थी तो मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, तो रोई, बहुत रोई, दादी मैं बहुत सेवा करना चाहती हूँ, खो नहीं सकता है। दादी तो ऐसे देखने लगी, कहती अरे सेवा के पीछे तुम क्यों इतनी रो रही हो, तुम ऐसे समझो कि बाबा ने और ड्रामा ने तुमको त्याग तपस्या का मौका दिया है, अभी अपने आप को ऐसी देवी बना दो कि आपके पीछे सेवा छिम छिम करके आवे। ये है रियल, हम कौन है, हम ना व्यक्ति या वस्तु के पीछे गुलाम रहना है, ये गुलामी को खत्म करना है। जब तक हमने अंदर से स्वीकार नहीं किया है कि हम ज्ञान मार्ग में आए हैं स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए। अभी मैं तो बहुत एक्सक्यूज दे सकती थी, नहीं थोड़ा बहुत मम्मी पापा के मदद से लेकर के करे ना, नहीं बिल्कुल नहीं। कहां तक गुलामी में जीना चाहते हैं आप, ये आप डिसीजन ले लो। समझ में आई बात। एक माता थी, ये लंदन की माता है, तमिल माता थी। मैं क्यों आपको स्टोरी सुनाती, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में महसूस हो त्याग की शक्ति, तपस्या की शक्ति। उसका पति एक्सेप्ट नहीं करता था कि वो आवे ब्रह्मा कुमारी इसके पास, ठीक है, और उसका पति उसको अलावेंस, उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, क्योंकि पति के सिग्नेचर के बिना वो पैसे भी खर्चा नहीं कर सकती थी, क्योंकि पति का ये डर था कि ये शायद ब्रह्मा कुमारी इसको पैसा ना देवे, ठीक है। ये माता इतनी होशियार, और उसको मधुबन आना था। क्या हुआ, उसने एक साइड में सिलाई का काम शुरू कर दिया, घर घर में छोटा सा कार्ड बना करके, वो सिलाई में एक्सपर्ट थी, उसने चुपचाप सिलाई का काम शुरू कर दिया और चुपचाप अपना बैंक अकाउंट खोल दिया। फिर उसको थोड़े समय सिलाई का काम करके, जॉब करके पैसा मिला बैंक अकाउंट में, अपना टिकट खरीद लिया, पति को बोला मैं जा रही हूं। पति तो डर गए, ये तो स्वतंत्र बन गई, अभी मुझे छोड़ेंगी, नहीं नहीं भल। फिर अभी वो पति यू टर्न लगा करके सहयोगी बन गया है उसका। समझ में आई बात। आप जहां तक डर दबाव में रहेंगे ना, तो दबाव करने वाले बहुत है। आप जब अपनी मेहनत से खड़े हो जाएंगे ना, वो डरेंगे। क्या है, भगवान है साथ में, डरने की क्या बात है। तो कहां तक आप इस गुलामी में जिएंगे। अभी तपस्या की बात आती है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में, तपस्या का सच्चा फल है खुशी। आपकी तपस्या सही है तो उसका फल खुशी है, सच में। आपकी तपस्या हो ही नहीं रहे तो खुशी नहीं मिलेगी आपको। ये आप सीधा समझ लो। अभी तपस्या की परिभाषा ये है, कोई हठ योग की बात नहीं है, लेकिन जो हमारा फाउंडेशन है, पवित्रता सत्यता का फाउंडेशन है, उसका प्रयोग करना ये है तपस्या। समझ में? हर बात में। और हमको कितना चांसेस है, जब सच्चाई से हम प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ सिचुएशन में, तब तो हमको नया रिजल्ट मिलेगा ना। लेकिन जैसे ही वैसे ही अपने आप को चलाएंगे और फिर हम कहेंगे चलो हम योग में बैठ करके 8 घंटा योग करें, योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि तपस्या का एक्सपेरिमेंटेशन कर्मों में होता है। कर्मों में वृत्ति का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन, स्मृति की परिवर्तन, तब तो पाप से पुण्य कर्म बनते हैं ना। तो तपस्या का दूसरा फल है कि आप कर्म योगी फरिश्ता बनते हैं। अदरवाइज भक्ति का क्या है रसम रिवाज? एक तरफ पाप करते रहो और दूसरे तरफ बस बैठे रहो कि मुझे 8 घंटा योग करना है, इतना दान देना है, ये क्या? कुछ परिवर्तन नहीं आता है इसमें। अभी सच्चाई से प्रयोग कुछ चीज का करना है। मुझे ये बात पता नहीं कल परसों कुछ एक सिचुएशन आया था, मैंने देखा एक बहन थी, उसको उसने मेरे साथ शेयर किया, लेकिन उसको ये था कि मुझे सभी के सामने अच्छा बनना है, कोई मेरे लिए बुरी दृष्टि ना रखे, कोई मेरे लिए बुरा विचार ना ले। तो बहुत मेहनत करके सभी के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहती है, वो करना चाहती है, लेकिन खुद दुखी है अंदर से, असंतुष्ट है अंदर से, सभी को खुश करने में बैठी है लेकिन वो खुद अंदर से नाखुश है। मैंने बोला आप जो कर रहे हैं, आप चाहते हो आपकी छवि सभी के आगे ठीक रहे, और आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं इसमें। चलो आपको सर्व के प्रति महिमा मिलेंगी कि आप अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप महिमा योग्य बनेंगे बाहर रूप से, लेकिन पूजनीय लायक नहीं बन सकते हैं जब तक आपने सत्यता अंदर से विवेक से काम नहीं लिया, ईश्वर से काम नहीं लिया, आप पूजनीय लायक नहीं बन सकते हैं। तो ठगी माना क्या? एक छवि बाहर की, दूसरा कुछ अंदर। और बाहर से आप देखेंगे ना, जो जिसको अपनी छवि बनानी होते ना, बहुत शोई पिक्चर होता है उसका, अच्छी अच्छी बात करेगा, अच्छा अच्छा वही करेगा, वो एक बाहर क्या कहते हैं एक्सट्रोवर्जन, बाहर मुक्ता की एक आदत होगी उसकी। जो रियलिटी में अंदर का काम कर रहा है, अपने मन दिल को शांत साफ रख रहा है, ये व्यक्ति गुप्त रहेगा। उसको ना आगे आने की कोई इच्छा है, ना कुछ करने की इच्छा है, कुछ नहीं है, उसको रियलिटी में रहने की इच्छा है। ये बहुत गुप्त रहेगा लेकिन राइट टाइम पे राइट समय पे पहुंच जाएगा मदद करने के लिए, एंजल का काम करेगा ये। क्योंकि ये जो व्यक्ति ऑनेस्टी से अपने आप को झांक रहा है, अपने आप को परिवर्तन में लगा पड़ा है, एक, एक, एक जैसे रस बैठा हुआ है, उसको वही लगन है, उसे बाहर का कोई मतलब नहीं है। आप मुझे अच्छा समझो या ना समझो, उसका कोई मतलब नहीं है। तपस्या का फल ये है, अंदर की आंतरिक खुशी पैदा होती है। लेकिन सच्चा बनना है, इसका तो लगन चालू करो ना अंदर से। सच्चाई जब अंदर से पैदा होती है ना, तब पवित्रता की शक्ति बढ़ती है। दोनों का बहुत आपस में एक गहरा कनेक्शन है। आप कहेंगे बाबा कहते हैं हम प्योर बने प्योर बने, लेकिन साथ साथ में सत्यता भी इसकी कनेक्शन में है। कहां तक खुद के साथ सच्चे बने हैं और कहां तक आप अपने विवेक को दबा करके कर्म में आ रहे हैं। बस लोक लाज के प्रभाव में आकर के कर्म कर रहे हैं। बस सभी के सामने मैं ठीक रहूं। ये क्या ठगी खुद के साथ करनी है। दादियों की खूबी तो ये ही, अंदर बाहर एक, इसीलिए तो एक की याद सदा रहती थी ना। तो भट्टी में आए हैं ये सारी किचड़ा निकालने के लिए। मैंने उस दिन भी बताया था कि झूठ तो जैसा एक धर्म बन गया है, अपनी महिमा की भी झूठ, कुछ किया भी नहीं है तो भी झूठ बोलो कि मैंने ही किया है, ये इसने मेरे लिए बोला है, क्या है ये। जो आपने किया है उतना तक ही बोलो, नहीं किया है तो नहीं बोलो। और निंदा, चलो बाहर मुख से तो नहीं करेंगे, अंदर किसकी गिलानी चल रही है ना, अंदर किसी के प्रति घृणा भाव है, वो धक्का किसको लगेगा। इसीलिए मैं वापस आती हूं क्लास की शुरुआत में, आप जाओ वापस जड़ में काम करो, बाबा क्या मुझे बनाना चाहता है इसकी रियलिटी में पहले जाओ, ये फाउंडेशन पहले ठीक करो, तभी ऑटोमेटिक त्याग तपस्या सेवा की लहर शुरू होती है। पहचानो कौन आया है मेरे लाइफ में, मुझे क्या बना रहा है। ठीक है, अभी दीदी ने बोला 15 मिनट क्वेश्चन आंसर करना है, आप आइए। ठीक है ना, सभी को क्लियर हुआ है ना बात।
ओम शांति। सबको दीदी की बातें समझ में आई। सच्चाई और सफाई, धोखा किसको दे रहे हैं, किसी और को, अपने आप को ही। अपने धोखे से खुद को बचाना, इसलिए गीता में कहा गया है आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु, किसी और का नहीं, अपने आप के ही। तो कुछ एक क्वेश्चन है दीदी, उसका आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले एक अनाउंसमेंट, रिटर्न जर्नी प्लान अपनी निमित्त टीचर्स या ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जल्द से जल्द लिखवाए। रिटर्न जर्नी जो जाने वाले, कितने बजे जाना, आपको यहाँ से जो सुविधाएं चाहिए उसके बारे में अपने टीचर्स निमित्त को, या तो खुद जाकर के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रिटर्न जर्नी की जानकारी देने के लिए। यात्रा भोजन भी आज दोपहर तक अवश्य, किसको भोजन की व्यवस्था चाहिए, रात का दोपहर का जो भी चाहिए, आज दोपहर तक अवश्य बताएं। अच्छा, 5-6 क्वेश्चंस है। पहला प्रश्न है, कई आत्माएं लेट आई है ज्ञान में, पर समझ थोड़ा डैश डैश डैश, पुरुषार्थ भी शॉर्टकट चाहिए। लेट आई है, लेट आकर के ज्ञान में भी पर थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन पुरुषार्थ शॉर्टकट वाला बताइए आप।
एक ही शब्द है शॉर्टकट का, बाबा है? बाबा बस। नहीं सच में, आप जितना पुरुषार्थ के डेप्थ में आएंगे, बहुत सिंपल है बाबा, लेकिन दिल से बाबा। आप देखो हमारी दादियां 8th स्टैंडर्ड तक, कोई 3rd स्टैंडर्ड तक होशियार तो नहीं थी, ऐसे दुनियावी कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, लेकिन एक दिल का बाबा निकलता था, बाबा इनके सामने फिदा होता था। वेरी सिंपल। और क्या है, ये लेट बेट की बात नहीं सोचो, हम जो भी आए हैं, मैं अपनी बात करती हूं, हमने साकार बाबा को तो देखा नहीं है, हम अव्यक्त रचना है, ठीक है, लेकिन इसमें भी बाबा ने ब्लेसिंग दिया है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। अभी आप ब्लेसिंग को याद करेंगे तो पूरा ही याद करेंगे ना, एक शब्द तो नया याद करेंगे, आप लास्ट पकड़ के बैठे हो, लेकिन फास्ट में ही शब्द याद किया, फर्स्ट शब्द नहीं याद किया। ये ब्लेसिंग को अपनाओ, जैसे अव्यक्त रचना रची है आपको ऑटोमेटिकली आपके छाप लगी है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। अभी पूरा ब्लेसिंग याद करेंगे तो ही आपके लिए काम आएगा ना, अधूरा याद करेंगे तो कुछ काम में नहीं आएगा। तो रियलिटी में आपको बताओ ना, कुछ भी आपको फेस करना है, कुछ भी, बाबा शब्द पेट और दिल से निकलना चाहिए, बस इतना ही।
ठीक है, जिसने भी प्रश्न पूछा। सेकंड, अमृत वेला 1-2 घंटा नहीं कर पाते, पर 20 या 30 मिनट का कोई शक्तिशाली अभ्यास हो, 1-2 घंटे के बराबर हो जाए। सारा शॉर्टकट ही चाहिए।
किसी ने बोला अमृत वेला 1-2 घंटा करना
शॉर्टकट?
नहीं नहीं सुनो, ये हठ योग नहीं है सिस्टर्स, ये हठ योग नहीं है। जबरदस्ती योग में बिठाओ, आधा नींद में बैठो। हम देखते हैं ना बाबा के कमरे में, वो जो अकेला सीट आगे है ना, वो सोफा, वो सिंगल सोफा आगे, बस लोग समझ तपस्या में वहां जाके बैठ के अच्छी नींद करूं, ऐसे बैठे होते।
अच्छी नींद भी आती है
ना? अच्छी, वो तो अच्छी नींद आएंगी ना, लेकिन संस्कार कौन सा बनता है? फिर आपका योग कभी नहीं लगेगा। इसलिए सोच समझ के योग में बैठो, तैयार होकर के, एक इंटेंशन को लेके योग में बैठो। देखो, एक छोटी सी युक्ति है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो मुझे बहुत मदद मिली है इस युक्ति से। बाबा ने युक्ति बताई है मुरलियों में कि बच्चे एक स्वमान को पकड़ के बैठो। रियलिटी है कि अपना योग, मैं आपको बताऊं, मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है 40 मिनट साइकिल्स में अपना योग लगता है। जैसे नींद के साइकिल्स होते हैं ना, वैसे योग का एक 40 मिनट पीरियड होता है, फिर उसके बाद एक दूसरा पीरियड शुरू होता है। लेकिन उस 40-45 मिनट्स में एक ऐसा इंटेंशन के साथ, लक्ष्य के साथ बैठ करके उसके डेप्थ में जाओ, तब रस निकलता है। एक स्वमान रात को, अगले दिन रात में उसकी तैयारी करो। मुझे वर्तमान समय में कौन से स्वमान, या कौन से, मेरा स्वमान नहीं, बाबा का भी एक टाइटल ले लो। आपको जो दिल को चाहिए, जो दिल पसंद है, वहां से शुरू करो। उसका थोड़ा एक मुरली पढ़ो, एक रिसर्च करो, लिखा पट्टी करो, ताकि सोने से पहले वो सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में आ जावे। एक बहुत अच्छी युक्ति है कि सोने से पहले ना टेलीविजन देखना है, ना मोबाइल देखना है, लेकिन मुरली पढ़ के सोना है, तो वो डेटा आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होता है। फिर जब आप सवेरे उठेंगे तो वो संकल्प शक्ति, जो तैयारी की है अगले रात में, वो फिर आपको मदद मिलेंगी आपके संकल्प में। उस संकल्प में आप ठहर पाएंगे, क्या है बाबा आपको दिलाराम बोलते हैं, आप के पास आने से आराम कैसे मिलता है, उसके डेप्थ में जाओ, बहुत मजा आएगा। कहां टाइम बीतता है वो देखेंगे ही नहीं, लेकिन तैयारी चाहिए अमृत वेले के लिए, क्योंकि आपका अमृत वेले के ऊपर जो असर पड़ता है वो अगले दिन का असर पड़ता है। अलबेले होकर के रात को सोए हैं, चार्ट नहीं लिखा है, क्लियर नहीं किया है अकाउंट, खाली नहीं हो गई है, मुरली सुन के नहीं पढ़े, इसलिए सारा अमृत वेले में गड़बड़ी होता है। फिर सोचते हम 2 बजे उठेंगे। दादी भी खुद कहती थी, जो व्यक्ति कहते मैं नहीं उठ सकती हूँ 2 बजे, जो उठते हैं सवेरे उठ के मैं प्रणाम देती हूँ लेकिन मैं नहीं उठ सकती। दादी तो उठते थे 3:30-3:30 बजे, थोड़ा तैयार होकर, फ्रेश होकर फिर बाबा के पास आते थे, लेकिन योग बड़ा पावरफुल होता था। 40 मिनट 45 मिनट योग पावरफुल, नॉट 2 घंटे आधा नींद वाला, तब आपके योगी के संस्कार बनेंगे।
टाइम कॉन्शियस नहीं, क्वालिटी कॉन्शियस, जितनी देर बैठे वो क्वालिटी का। जैसे कल भी दीदी ने कहा ना, 8 घंटा नौकर करता हो, 8 घंटा काम, हम तो बाबा के दिलाराम, बाबा के दिल से जुड़े हुए घड़ी देख करके थोड़ी करने वाले, हम तो क्या दिल में दिल से याद करने वाले। अब तीसरा प्रश्न है, अंतिम समय की भी अंतिम घड़ियां हैं, फिर भी ब्राह्मणों के संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो पा रहा, बल्कि और ही विकराल रूप ले रहे हैं। समय की समाप्ति से पहले अंदर का सारा निकल रहा है बाहर, विकराल रूप में ब्राह्मणों के संस्कार दिखाई दे रहे।
राजधानी स्थापन हो रही है, पाप का घड़ा जब तक ओवरफ्लो नहीं होगा तब तक विनाश शुरू नहीं होगा। लेकिन बात क्या है, ये सब देख के क्या फायदा है आपके लिए? इस प्रश्न का जवाब क्या फायदा है आपकी उन्नति के लिए मुझे बताओ, कुछ फायदा है आपको? इसका उत्तर देने का कोई फायदा है नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल, एक भाई आया था हमारा, विदेश का भाई है। तो जब आपको पता ही ना, जब मोबाइल फोन का रवाज शुरू हुआ तो वो जो छोटे छोटे नोकिया फोन आते थे, फिर ब्लैकबेरी आया, तो वो बहुत पुराना भाई है, 74 से था। तो वो जब आता था तो उसको बहुत जैसे बाबा की घर की सिंप्लिसिटी, त्याग भाव, तपस्या भाव उसके दिल पे बहुत छाप लगी। तो जब उसने ये सारा शुरू देखा कि सभी के हाथ में मोबाइल आया है, जैसे वो ऐसे कहेंगे ना जो योगी के फीचर्स थे सभी के, वो जैसे एक बस ऐसे सारा टाइम, तो दादी के पास आकर के बोला कि दादी ये क्या हो रहा है यज्ञ में, देखो ना ऐसे ये हो रहा है, ये हो रहा है, कल्चर परिवर्तन हो रहा है। तो दादी ने उसको बोला, देखो यज्ञ थोड़े लोगों की सच्चाई के आधार से यज्ञ चल रहा है, आपको कौन से कैंप में रहना है? इस कैंप में रहना है, स्वदर्शन वाले कैंप में रहना है, या परदर्शन के कैंप में रहना है? अभी आप चूज करो, आपको कौन से कैंप में रहना है। ठीक है, तो इसका क्या आपके साथ क्या लेन देन है? समझ में आई बात? फोकस। ये जिसने जवाब प्रश्न ये पूछा है उसको फोकस करने की, खुद के पुरुषार्थ को फोकस करने की आदत नहीं बैठी है अभी तक।
लगता है पहले दादियां जो थी ना वो नोकिया फोन थे, आजकल हम लोग एंड्रॉइड फोन है, जल्दी से ड्रेन हो जाते हैं। पहले जमाने वाले एक बार चार्ज करो दो दो तीन तीन दिन चलते थे, उसमें दो ही हरा बटन लाल बटन, दो ही बटन होते थे,
कोई ऐप्स नहीं थे ना उस समय, यूट्यूब नहीं था,
बहुत सारे ऐप्स थे। दादी हमारी वो तीन तीन चार चार दिन एक बार रिजर्व होता था। हमारे पास क्या है, इतने ऑप्शंस है, इतना जल्दी ड्रेन, अभी अभी चार्ज करके आए, अभी अभी क्या हो रहा है, ऐसे मोबाइल बन गए हैं हम लोग। अच्छा भाई, नेक्स्ट है संस्कार परिवर्तन की सहज विधि। दूसरों की कमियां बड़े रूप में दिखाई देती है, अपनी कमियां सात गड्ढे खोदने के बाद भी नहीं दिखाई देती।
ओह डियर,
सात खोदा भैया तब भी अपनी कमी नहीं दिखाई देती है, दूसरों के तो बिना गड्ढे खोदे ही दिखाई देने लगते हैं।
ये तो एक नेचुरल स्वाभाविक बन गया है ना, लेकिन देखो एक प्रोसेस है। ठीक है, आपको दूसरे की कमी दिखाई दे रही है, ठीक है, अभी इसके पीछे जाओ, अपने आप को प्रश्न पूछो, मुझे ये चीज क्यों दिखाई दे रही है?
सुंदर है,
ठीक है, फिर इसके पीछे जाओ कि मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, माना मुझे, मैंने ऐसे चश्मे पहने हैं, ठीक है, अभी मुझे क्लू मिल रहा है कि जो मैं देख रही हूं उसके चश्मे मैंने पहने हैं, माना वो चीज मेरे अंदर है। अभी मैं अपने आप को झांक करूं, कहां पे है ये जगह पे, कहां पे ऐसी आदतें मैंने देखी, वो सिचुएशन नोट करो, वो संबंध व्यवहार में जहां पे आपने वही विकार यूज किया है, वही किया है किसी के साथ, वो नोट करो। माना पूरा चक्र घुमाना है, ऐसे बाहर नहीं जाना है, लेकिन बाहर जाकर के वापस अंदर आना है। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बस थोड़ा और प्रश्न गहरा पूछ करके रूट में आना है और स्वीकार करना है। समझो किसी ने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, सेवा में चांस नहीं दिया, आपको रिजेक्ट किया, अरे ये देखो ना मेरे साथ बड़ी टीचर है, कैसा व्यवहार किया, ऐसा क्या, ठीक है, ये क्या ट्रैक शुरू करेंगे? आपको चक्र का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान है, कर्म फिलॉसफी का ज्ञान है, 63 जन्मों का पाप का बोझा है, तो क्या कुछ तो सामना करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसने मुझे रिजेक्ट किया, तो उस समय मैं उसको रिजेक्शन में रूप में मैं उसको ब्लेम करती हूं, तो मैं ना कुछ सीखती हूं, ना वो सीखते हैं, ना कुछ सुधरता है। लेकिन उस समय मैं उस बात को स्वीकार करती हूं कि पिछले जन्मों में मैंने भी ऐसा व्यवहार किया है, इसलिए वापस वो व्यवहार का लहर मेरे पास आ रहा है। अभी मुझे इसको यहां रोकना है, किसी को दोषी बनकर के दोबारा साइकिल नहीं बनाना है इसका। स्वीकार करो, थैंक यू, थैंक यू, मेरा कर्म का हिसाब किताब चुप तो हो रहा है। और बाबा सॉरी, और आत्माएं जो भी आत्मा है, सामने वाली आत्मा तो कभी निमित्त होती है, उसके साथ कर्म का हिसाब किताब नहीं होता है, वो बस संस्कार के माध्यम से निमित्त बनती है कुछ ट्रिगर करने के लिए अंदर से। संस्कार तो हमारा है ना, कर्म का हिसाब किताब का रूट है हमारे संस्कार के साथ। जब तक हम वो संस्कार यूज करते रहेंगे, वो कर्म का हिसाब किताब कोई भी सिचुएशन में या संबंध में आएगा हमारे सामने। और जब वो संस्कार परिवर्तन होता है तो कर्म का हिसाब किताब आएगा ही नहीं। तो एक तो झांकना है, ऐसे रूप से स्वीकार करना है उसको कि मैंने मेरे एक जन्म में मैंने भी ऐसा व्यवहार किया है। जब वो आप रियली दिल से स्वीकार करते तब खुद को क्षमा कर सकते हैं। सॉरी बाबा, ये मैं नहीं हूं, मैंने ना अपनी देवी पद का लाज रखा ना आपका लाज रखा, सॉरी बाबा। बाबा को सॉरी करो, खुद की अंदर की जो देवता है उसको भी सॉरी करो, तब आप देखेंगे आपका दिल खुलता है, इतना फ्री हो जाता है आपका दिल। वो जब फॉरगिवनेस आता है ना अंदर से, बहुत फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद संस्कार परिवर्तन करने के लिए मास्टर बीज रूप अवस्था का अभ्यास चाहिए। बीज, फुल स्टॉप, कई बातों का समेटो, अंदर की भरपूरता महसूस करो कि मैं वो सुप्रीम बीज की संतान हूं, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है। इसका स्पेशल तपस्या का टाइम निकाल के अभ्यास करना पड़ता है।
थैंक यू, बहुत अच्छा दीदी ने बाबा से भी क्षमा मना, अपने ही संपूर्ण रूप से, अपने देवत्व स्वरूप से भी। अभी मैं यहाँ हूँ, बाबा को भी सॉरी, उस देवत्व रूप को भी सॉरी। मुझे जो बनना है उसको रियलाइजेशन, फीलिंग प्रूफ कैसे बने, तीसरी बिंदी जल्दी से कैसे, सारे जल्दी जल्दी वाले बातें हैं प्रश्न, तीसरी बिंदी जल्दी कैसे लगाए, कौन, कोई तो हमें हाथ धो करके हमारे पीछे पड़ रहा, वो तो कैसे संकल्प भी ना आए, है ना, हमारे पीछे लगा पड़ा है।
नहीं देखो, फीलिंग प्रूफ, हमने दादी को एक बार ही पूछा, दादी आप अपने आप क्या पुरुषार्थ करते, दादी कहते मैं एक ही पुरुषार्थ करती हूँ, मैं फीलिंग्स को क्लीन रखती हूँ। बस फीलिंग्स को क्लीन रखेंगे ना, स्वच्छ रखेंगे ना, तो कोई बैक्टीरिया वायरस जमेंगे नहीं, किसी और का फीलिंग का प्रभाव आएगा नहीं। और ये जो तीसरी बिंदी की बात है ना, ये सारा बात है ध्यान के ऊपर। देखो मुझे आज पता है कि मुझे, हम सेवा के क्षेत्र पे फील्ड पे है, हमको पता है कि 4 घंटा योग हमको मिनिमम चाहिए। मैंने अपने लिए मैं बात कर रही हूँ, जैसे पेट्रोल डालते हैं ना गाड़ी में, आपको पता है इतना तक पेट्रोल डालना है तब तो गाड़ी चलेगी ना, तो योग हमारा पेट्रोल पंप है। हम एक बेसिक लेवल का योग नहीं कर रहे हैं तो मनसा में शक्ति कैसे आएंगी आगे बढ़ने के लिए। तो हर एक को अपना योग का चार्ट को देखना बहुत जरूरी है। और आप कम पेट्रोल में 100% आउटपुट चाहते हैं। मुझे याद है जब मेरा पूरा 4 घंटे का योग होता है ना दिन का, तो किस कैसे सेवा होती है, कैसे काम होते है, मुझे पता भी नहीं चलता है, सोच का भी पता नहीं चलता। लेकिन सोच जब चलते हैं, माना माइंड में वीकनेस आई है, माना एनर्जी की कमी है, योग के बल की कमी है, पेट्रोल नहीं है, अभी पेट्रोल डालो गाड़ी में, अभी वो संकल्प को बैठ करके एनालाइज करेंगे, ये कैसे कैसे, ये क्या, आप अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाएंगे। बात ये नहीं है, बात है कि एनर्जी की कमी है, आपको भरो पेट्रोल अंदर, तब आप देखेंगे ऑटोमेटिक मशीनरी चलती है।
गाड़ी भी नहीं है, ड्राइवर भी अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी की, लेकिन पेट्रोल नहीं है तो कैसे चल पाएगी, है ना। इसीलिए दीदी ने बहुत अच्छा कहा, गाड़ी भी नहीं, नई गाड़ी है, ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, समझदार है, लेकिन अपने आप पेट्रोल इतना भरेंगे तो बहुत अच्छी स्पीड पे चलेंगे। अच्छा नेक्स्ट है, ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणाओं को सहजता से जीवन में कैसे लाए, क्योंकि कुछ एक बाबा के बच्चे नए नए भी बैठे हैं, स्पेशली उसमें कई बार भोजन की भी पवित्रता की भी बात आती है, तो इनको सहजता से कैसे अपनाएं।
देखो आपका जो ये ब्रेन है ना, आत्मा रॉकेट के माफिक चल सकती है, ब्रेन रॉकेट के माफिक नहीं चलता है। परिवर्तन के फील्ड में आपको एक या दो बातें पे फोकस करनी पड़ेगी जो आपको वर्तमान समय में उस चीज में परिवर्तन लाना है। एक ही बात, चाहे भोजन की बात, चाहे चलो अमृत वेले उठने की बात, एक ही बात पे फोकस ला करके इस बात में विजय प्राप्त करो। जब वो कंप्लीट होता है तब दूसरी बात छेड़ो। अभी क्या होता है, हमको पूरी मर्यादाओं की लिस्ट मिलती है, एक साथ पे शुरू करते हैं, ब्रेन कोप अप, ब्रेन रिजेक्ट करेगा आपका, क्योंकि उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है एक साथ में सारे चेंजेस लाने के लिए। तो आप एक चीज के ऊपर फोकस करो, और जब आप एक चीज के ऊपर फोकस करके उसमें परिवर्तन लाते तो आपका संस्कार बन जाता है, फिर दूसरी बातों में जल्दी परिवर्तन होता है। अंडरस्टैंड? लेकिन एक बात में आपको डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा।
लास्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों के दो महाशत्रु कड़ी बीमारी आलस्य और ईर्ष्या, इससे बचने का उपाय। आलस्य भी है और ईर्ष्या भी है, तो कड़े दुश्मन है, इसके ऊपर क्या काम करें जो हम इससे बच सके।
अरे इसके ऊपर थोड़ी काम करना है, खिचड़ी के डब्बे में जाकर के खिचड़ी के साथ काम करना है। ये सारी निशानी है देहभान की, रूट है वो। अभी किसी ने मुझे, अच्छा ईर्ष्या की बात आई ना, तो क्यों आलस्य बात, क्योंकि दादी ने एक बात ही बताई थी कि ईर्ष्या का रूट है आलस्य। आप कुछ अंदर से कर नहीं रहे हैं, आपको सहन नहीं हो रहा है, कोई कर रहा है वो चीज, तो ये समझ लो ईर्ष्या अंदर से आ रही है, माना आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। समझने की बात है ना, मैं लेजी हूं। अभी उस लेजीनेस को परिवर्तन करना, देहभान का रूट है ये। क्या है ये देह, मिट्टी है, ग्रेविटी है, खींचती है, और हम इस खिंचाव में समर्पण हो जाते हैं। समझो सवेरे आप उठते हैं, ठीक है, अमृत वेले में समय में, और इधर ऐसे ढीले ढीले उठते हैं, मन ढीला हो जाता है, चलो थोड़ा और ठंडी के मौसम में थोड़ा और 5 मिनट सो जाते हैं, वो खींचता है शरीर, कंफर्ट, क्विल्ट का कंफर्ट खींचता है, डनलॉप पिलो का कंफर्ट खींचता है। लेकिन उस समय आप क्या करते हैं उस देहभान के सामने, आप उस जो खिंचाव होता है उसमें समर्पण हो जाते हो, या उस समय पे बाबा याद आकर के अपने फीलिंग मानसिक रूप का परिवर्तन करके उस साइकिल को ब्रेक करते हो। आपने एक बारी भी उस साइकिल को ब्रेक किया ना, आप देखना कितनी एनर्जी बढ़ती है आपकी। लेकिन एक बारी तोड़ना पड़ता है, इसीलिए आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है तो आपको पहले पूरी मेहनत करनी पड़ेगी देह अभिमान को तोड़ने के लिए। हम जोड़ना चाहते हैं, तोड़ने का काम नहीं करना चाहते हैं। ये तोड़ो, ये खींच को तोड़ो। चलो आपको कुछ सेवा का चांस मिला, दूसरे को दे दो, दूसरे को आगे बढ़ाओ। आपको कुछ अच्छी चीज मिली खाने के लिए, पहले दूसरे को खिलाओ। तो ये जो देह भान जो हमारा है, मैं मेरा का देह भान, ये तोड़ना होता है। जब तोड़ेंगे ना, तब ये सारी बातें आपके ही सॉर्ट आउट, आपके हाथ में आएंगी, आप मायाजीत बन सकेंगे। लेकिन रूट ये है, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू
दीदी ने कहा, सर्किल का एक सर्किल बना, हमारे संस्कारों का एक चक्र बना हुआ है, उस चक्र को ब्रेक करना है, तभी जाकर के अंदर से क्या होगा, नारियल तोड़ेंगे तो मीठा पानी निकल आता है। ये सर्किल को भी ब्रेक करेंगे तो अंदर की अच्छी चीज क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। इस
समझ में नहीं आता,
बड़े युक्ति से चलना पड़ता। हाँ युक्ति से चलेंगे, एक मिनट, ठीक है अभी दो मिनट सभी बैठे हैं, बाबा को याद करेंगे।